कमरे में कुछ पल की खामोशी पसरी रही, ऐसी खामोशी जिसमें शब्द नहीं यादें बोलती हैं। रत्ना देवी ने महसूस किया कि अगर अभी नहीं पूछा तो शायद कभी नहीं पूछ पाएंगी। उन्होंने हल्के से गला साफ किया, जैसे अपने ही दिल को इजाजत दे रही हों। वैसे दीदी, उनकी आवाज़ धीमी थी, संभली हुई, आपने कभी ठीक से बताया नहीं महेश जी की मौत कैसे हुई थी, क्योंकि मौके पर सिर्फ आप थीं। ये सवाल अचानक नहीं था, ये उन अनकहे पलों से निकला था जो सालों से उनके भीतर जमा थे, हर मुलाकात में, हर खामोशी में। सुषमा देवी के चेहरे पर जो ठहराव था वो जैसे एक पल में चटक गया। उनकी नज़रें सामने दीवार पर टिक गईं, आंखों में आई हल्की सी चमक तुरंत बुझा दी गई। एक्सीडेंट था, उन्होंने कहा बहुत छोटे वाक्य में, मंदिर के बाहर सड़क पर। बस इतना कहकर वो रुक गईं, जैसे इससे ज्यादा कुछ बोलना किसी जख्म को फिर से खोल देना हो। लेकिन रत्ना देवी समझ गईं ये पूरा सच नहीं है। उन्होंने देखा सुषमा देवी की उंगलियां जो तकिए के किनारे रखी थीं अब उसे मरोड़ रही थीं, नाखून कपड़े में धस रहे थे, आंखों के कोनों में नमी उतर आई थी जिसे वो बार बार पलके झपकाकर रोकने की कोशिश कर रही थीं। दीदी, रत्ना देवी ने हल्के से पुकारा, लेकिन सुषमा देवी ने तुरंत बात बदल दी, अचानक जैसे कोई खतरा टाल रही हो। आजकल ये हवेली, उन्होंने कमरे के चारों ओर देखते हुए कहा, पहले से ज्यादा सोनी लगती है, दीवारें भी जैसे सब सुनती रहती हैं। उनके शब्दों में डर नहीं था, थकान थी। रत्ना देवी ने कुछ नहीं कहा, बस समझ गईं ये सवाल से भागने का तरीका है। कुछ पल बाद सुषमा देवी ने गहरी सांस ली, जैसे खुद को फिर से समेट रही हूं। श्यामली को भेज देना, उन्होंने कहा, वो मुझे पाठ सुना देगी, आज मन बहुत अशांत है। रत्ना देवी ने सिर हिला दिया। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। आ जाइए, सुषमा देवी ने कहा। दरवाजा खुला, श्यामली अंदर आई। उसके चेहरे पर वही सादगी थी, न कोई बनावटी मुस्कान, न कोई चालाक नजर, हाथ में छोटी सी किताब और आंखों में संकोच। आपने पाठ के लिए बुलाया है, उसने विनम्रता से कहा। सुषमा देवी ने उसकी तरफ देखा और उसी पल उनकी आंखों में कुछ ऐसा उतरा जिसे श्यामली समझ नहीं पाई। वो नज़र न पूरी तरह गुस्से की थी, न खुली नफरत की, उसमें कुछ दबा हुआ था, पुराना, दर्दनाक और अधूरा। शुरू करो, सुषमा देवी ने सपाट आवाज में कहा। श्यामली बिस्तर के पास जमीन पर बैठ गई, किताब खोली और पाठ पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज साफ थी, शांत, धीमी, एक लय में बहती हुई, लेकिन हर शब्द के साथ सुषमा देवी की आंखों में सख्ती बढ़ती जा रही थी, जैसे हर मंत्र, हर पंक्ति उनके भीतर छुपे किसी पुराने दृश्य को कुरेद रही हो। रत्ना देवी ने ये सब देखा, उनका दिल बैठ गया। श्यामली को भी कुछ अजीब सा महसूस हुआ। पाठ पढ़ते हुए भी उसे लगा जैसे कोई उसे भीतर तक देख रहा हो, लेकिन उसने खुद को संभाले रखा। पाठ खत्म हुआ, श्यामली ने किताब बंद की, सिर झुकाया। कुछ और, उसने धीरे से पूछा। सुषमा देवी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे घूरती रहीं। अब वो नज़र खुलकर नफरत बन चुकी थी। श्यामली घबरा गई। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, उसने हिचकिचाते हुए कहा। नहीं, सुषमा देवी ने ठंडे स्वर में कहा, तुम जा सकती हो। श्यामली उठी, नजरें झुकाए दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जैसे ही वो बाहर निकली, पीछे से सुषमा देवी की आवाज आई, धीमी लेकिन जहर से भरी। श्यामली, वो ठिठक गई, तुम कितनी मासूम लगती हो, सुषमा देवी ने कहा। इतनी कि कोई सोच भी नहीं सकता कि तुम्हारी वजह से मेरे पति मरे थे। श्यामली के पैरों तले जमीन खिसक गई, उसने पलट कर देखा, लेकिन सुषमा देवी अब उसकी तरफ नहीं देख रही थीं, नजरें कहीं और थीं। मैं बदला लेकर रहूंगी, उन्होंने कहा, हर उस दर्द का जो उन्होंने झेला। श्यामली कुछ बोल नहीं पाई, उसका गला सूख गया, वो बाहर निकल गई। कमरा फिर से खामोश हो गया, लेकिन सुषमा देवी के भीतर तूफान मच चुका था। उनकी आंखों के सामने वो दृश्य लौट आया। अस्पताल की तेज सफेद रोशनी, दवाइयों की तीखी गंध, खून से लथपथ महेश जी स्ट्रेचर पर पड़े, सांसों के लिए जूझते हुए, सुषमा, उनकी टूटी हुई आवाज, बच्चों को संभालना, उनकी उंगलियां धीरे धीरे ठंडी पड़ती जा रही थीं और वो कुछ नहीं कर पाई थीं। फिर वो दिन आया जब चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई थी और घर में झगड़े शुरू हो गए थे। बेटों की आवाजें ऊंची होने लगीं, बहुओं की फुसफुसाहटें तेज, कागज मेज पर पटक दिए गए। मेरा हिस्सा, पहले मेरा हक। और वो एक कोने में बैठी सब देखती रहीं। उनकी एक बहू जो पहले माँ जी कहकर बात करती थी, अब मुंह फेर कर निकल जाती। खाना कभी समय पर नहीं, दवा कभी भूल जाना, और अगर कुछ पूछ ले तो जवाब मिलता, हमारे पास टाइम नहीं है। ये सब याद करते हुए सुषमा देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। और आज वो अपनी बहन से झूठ बोल रही थी। कह रही थी बच्चे बहुत अच्छे से रखते हैं। सच ये था वो इस हवेली में अकेली थी, यादों के साथ, दर्द के साथ और बदले की आग के साथ। उन्होंने आंखें खोली, दीवार पर पड़ती परछाइयां अब और डरावी लग रही थीं। महेश, उन्होंने बुदबुदाया, जो तुम्हारे साथ हुआ मैं उसे भूलने नहीं दूंगी। हवेली में कहीं दूर किसी दरवाजे की चरमराहट गूंजी और अंधेरे में कहानी ने एक और खतरनाक मोड़ ले लिया। दरवाजे की वो चरमराहट सुषमा देवी के कानों में देर तक गूंजती रही, जैसे किसी ने अतीत का एक और दरवाजा खोल दिया हो। उन्होंने करवट बदली, बिस्तर की चादर को मुट्ठी में कस लिया। सांसें भारी थीं लेकिन आंखें सूखी। उन्हें याद आया कैसे एक दिन बहू ने खाने की थाली रखते हुए बिना देखे कहा था, आज सब्जी नहीं बनी, वही दाल खा लीजिए। आवाज में ना आदर था न चिंता, बस औपचारिकता। और जब उन्होंने धीरे से कहा था दाल में नमक थोड़ा कम है, तो जवाब आया था अब इतना ही बना है, सबके लिए एक जैसा है। वो पल आज भी उनके सीने में चुभता था। कभी कभी रात में जब दर्द से उनकी कमर सीधी नहीं होती तो आवाज देने पर कोई नहीं आता, या आता भी है तो चेहरे पर झुंझलाहट साफ दिखती है। इतनी रात को क्या चाहिए, ये शब्द उन्हें किसी थप्पड़ से कम नहीं लगे थे। उन्होंने छत की तरफ देखा जहां कभी महेश जी लेटे लेटे कहा करते थे, इस घर की औरतें मजबूत हैं सुषमा, ये हवेली इन्हीं से चलती है। उनकी पलकों के नीचे आंसू जमा हो गए। मजबूत, उन्होंने खुद से कहा, शायद अब पत्थर बनना पड़ेगा। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया, लेकिन उस सन्नाटे में अब सिर्फ यादें नहीं थीं, अब वहां एक ठंडी सी कसम भी जन्म ले चुकी थी।